हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और दिग्विजय सिंह जी तो पहले ही उसका रुद्र रूप अकादमी में देख चुके थे, जब उसने मार मार कर गौरव को अधमरा कर दिया था। उस इंसिडेंट के बाद गौरव को उसके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, दिन रात उसने कड़ी मेहनत की थी। इतनी कड़ी मेहनत करके उसने वो मुकाम हासिल किया था जिसे हासिल करने में लोग सालों लगा दिया करते थे। फिलहाल अब उसने गहरी सांस ली, तभी दिग्विजय सिंह जी बोले थे, बेटा तुम पहले ठीक तो हो जाओ, उसके बाद मैं अभी उन लोगों को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। तुम जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे, हम लोग वहाँ के लिए निकल जाएंगे। और मैं शालिनी को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सभी लोगों को तब तक खाना पीना नाश्ता पानी करवा दे, हमें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अब जैसे ही दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा, आरण जी बोले, ठीक है बाबा, तो फिर आप फ़ोन कर दीजिए। अब जैसे ही दिग्विजय सिंह जी ने अपनी जेब टटोली तो उन्हें पता चला कि फ़ोन उनके पास नहीं है। वो चौंक गए और बोले, अरे लगता है फ़ोन तो मैं गाड़ी में ही छोड़ आया हूँ। बेटा तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं फटाफट जाकर फ़ोन लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो अपना फ़ोन लेने के लिए गाड़ी के पास चले गए थे। वहीं आरव जी की आंखों के सामने एक बार फिर से झलक का गुस्से वाला चेहरा घूमने लगा था। वो सोचने लगे थे कि पता नहीं मेरी बेटी वहाँ किस तरीके से सब हैंडल कर रही होगी, कहीं उसे गुस्सा ना आ गया हो। अगर किसी बात को लेकर उसका गुस्सा भड़क गया तो फिर मैं क्या करूँगा। जैसे ही दिग्विजय सिंह जी ने फ़ोन उठाया, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि फ़ोन में झलक और अनामिका की अनलिमिटेड मिस कॉल्स पड़ी हुई थी। ये देखकर वो पूरी तरह से चौंक गए और साथ ही हल्का सा डर भी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस बात का डर था वही हो गया, लगता है अब तो मुझे भी डरना पड़ेगा। इतने सारे मिस कॉल किए हैं और मैं एक भी कॉल नहीं उठा पाया, पता नहीं अब ये दोनों बेटियां और पोतियां मेरा क्या हाल करेंगी। दिग्विजय सिंह जी थोड़ा सा घबरा गए थे। वो फटाफट वापस कॉल करने ही वाले थे कि बदकिस्मती से लगातार कॉल आने की वजह से उनके फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। ये देखकर तो दिग्विजय सिंह जी और भी हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत ड्राइवर से कहा, चार्जर लेकर आ भाई, आज तो सच में मेरी शामत आने वाली है, पता नहीं मेरी झलक मेरे साथ क्या करेगी। कहीं ना कहीं इस वक्त वो पूरी तरह से घबरा गए थे। तभी ड्राइवर बोला था, साहब मैं फ़ोन चार्ज पर लगा देता हूँ। लेकिन दिग्विजय सिंह जी बोले, ठीक है मैं वार्ड में जा रहा हूँ, वहीं जाकर फ़ोन चार्ज कर लूँगा। ये बोलकर वो जल्दी से वार्ड में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना फ़ोन चार्ज पर लगा किया। चार्ज पर लगाते हुए आरव जी ने अपने पिता को इतनी हड़बड़ाहट में देखा तो चौंक कर बोले, क्या बात है पिताजी, आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं, क्या हुआ है। तभी दिग्विजय सिंह जी बोले, इतनी सारी कॉल करके इन लोगों ने मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म कर दी, अगर फ़ोन जल्दी चार्ज नहीं हुआ और मैं उनसे बात नहीं कर पाया तो तू जानता है ना उन्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, अब तो तेरी झलक से मुझे भी डर लगने लगा है। ये सुनकर आरव जी मुस्कुराए और बोले, अब आपको क्या हो गया पापा, आप क्यों डर रहे हैं। अब जैसे ही इस तरह की बातें हुई, दिग्विजय सिंह जी और आरव जी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। फटाफट जैसे ही फ़ोन चार्ज पर लगते ही 1-2% हुआ, दिग्विजय सिंह जी ने फ़ोन ऑन कर दिया। वहीं दूसरी ओर झलक और अनामिका अपने दादा को कॉल करते करते पूरी तरह से थक चुकी थीं, लेकिन अब तो उन्हें फ़ोन लगाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। उनके पास फ़ोन तो था लेकिन दादाजी के पास फ़ोन नहीं लग रहा था। अब अनामिका परेशान होकर बोली, झलक कहीं ऐसा तो नहीं कि दादाजी वाकई किसी प्रॉब्लम में हो, उनका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ क्यों जा रहा है, मुझे डर लग रहा है, हमें जाकर देखना चाहिए, यहाँ तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, तभी सिक्योरिटी वालों ने आकर तुरंत उन दोनों के हाथ पकड़ लिए थे। जब अनामिका ने कहा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, तब झलक ने भी उसकी तरफ देखा। वाकई उस वक्त दोनों के चेहरों पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। लेकिन तभी अचानक अनामिका का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह जी का ही था। फ़ोन में जैसे ही 1% बैटरी आई थी, उन्होंने सबसे पहले अनामिका को ही कॉल किया था। जैसे ही अनामिका ने स्क्रीन पर देखा कि उसके दादा का फ़ोन आ रहा है, वो फटाफट फ़ोन उठाकर कान पर लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके हाथ और कसकर पकड़ लिए और अनामिका को फ़ोन उठाने का मौका नहीं दिया। अब तो अनामिका गुस्से से शालिनी को घूरते हुए बोली, मेरा फ़ोन वापस दो, मुझे ये कॉल अटेंड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मेरे दादा का फ़ोन है। ये सुनकर शालिनी थोड़ा सा चौंक गई। उसने फटाफट फ़ोन की स्क्रीन देखी जहां कॉन्टैक्ट का नाम बीएफ फ्लैश हो रहा था। अब जैसे ही बीएफ नाम स्क्रीन पर दिखा, शालिनी ने तुरंत फ़ोन की स्क्रीन सबको दिखाते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, मैं तो आप लोगों से पहले दिन से यही कह रही थी कि ये दोनों एक नंबर की घटिया लड़कियाँ हैं, देखो इनके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है और ये कह रही हैं कि दादाजी का फ़ोन है। फिर वो तंज कसते हुए बोली, दादा और बॉयफ्रेंड में कोई फ़र्क नहीं होता क्या। दरअसल अनामिका अपने दादा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इसीलिए उसने उनका नंबर अपने फ़ोन में बेस्टी या बीएफ के नाम से सेव करके रखा था। तो ये सुन देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की राय झलक और अनामिका को लेकर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले तक जो लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थीं, अब लोगों को वो पूरी तरह से यूजलेस लगने लगी थी। सबको यही लगने लगा था कि ये दोनों लड़कियां असल में यहां सिर्फ बड़े लोगों का अटेंशन पाने के लिए आई थीं। और अब अनामिका के फोन की स्क्रीन देखकर तो लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि इनका जरूर कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा। लोगों को लगने लगा था कि शायद इनका कोई अमीर बॉयफ्रेंड होगा जो इन्हें इस सिचुएशन से निकालने के लिए आने वाला होगा। शायद इसी वजह से ये लड़कियां यहां तक चली आई थीं। इस तरह की बातें कानाफूसी में होने लगी थीं। वहीं आदित्य राणा थोड़ा सा चौंक गया था। वो सोचने लगा था कि क्या वाकई में ये सब सच है, क्या सच में ये लड़कियां इसी मकसद से यहां आई थीं। लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा था जो उसके दिल को खटक रहा था। इसी बीच सिक्योरिटी वालों ने जैसे ही झलक को और कसकर पकड़ा, झलक गुस्से से भर गई थी। अनामिका झलक को घूरते हुए धीमे स्वर में बोली, गुरुजी शांत हो जा यार, तेरी आंखों में तो मुझे खून दिखाई दे रहा है। ये अपने ही सिक्योरिटी गार्ड है। अभी हम लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करें? अगर हम बोलेंगे कि हम मल्होत्रा फैमिली से हैं तो ये लोग उस पर भी यकीन नहीं करेंगे। उन्हें तो ये भी लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि कभी दादाजी के साथ आई ही नहीं। ये सुनकर झलक ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से झलक ने दोनों सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने उसके हाथ पकड़े हुए थे उनके सिर आपस में भिड़ा दिए। उसके बाद तो जैसे झलक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लगातार उन पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। जिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने अनामिका के हाथ पकड़े हुए थे, झलक ने वहां जाकर उन्हें भी खींचकर एक एक कर जोरदार मुक्का दे मारा। महज कुछ ही मिनटों में झलक ने 8 से 10 सिक्योरिटी गार्ड्स को ढेर कर दिया था। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से अवाक रह गए थे। वहीं आदित्य राणा की तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झलक की जांबाज फाइट देखकर वो खुद को इम्प्रेस होने से रोक ही नहीं पाया था।
लेकिन अब शालिनी का सब्र पूरी तरह से जवाब दे चुका था। वो भला इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए कैसे देख सकती थी। उसने तुरंत गार्ड को निकालकर चलाने की ओर इशारा कर दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बहुत हो गया तुम लोगों का। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका है कि तुम लोग किसी मकसद के तहत यहाँ आए हो, लेकिन अब मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को यहीं जिंदा मार दूंगी, गोली मार दूंगी और एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शालिनी पूरी तरह से बेकाबू होकर ये सब कह रही थी। शालिनी की बात सुनकर अनामिका थोड़ा सा डर भी गई थी। वो तुरंत झलक की तरफ देखकर बोली, देखा तूने अभी किस तरह ये हमारे सामने बंदूक लेकर खड़ी हो गई है? अगर इसने मुझे गोली मार दी तो? अरे नहीं नहीं, मेरी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है। मैंने पूरी जिंदगी सैडनेस में एकदम मच्योर बनकर गुजार दी है। अब तुम्हें थोड़ी सी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती यार, अनामिका रोते रोते ये सब कह रही थी। लेकिन झलक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसे लगने लगा था कि अब लड़कियों के साथ साथ इन लोगों का सच भी सबके सामने आ जाएगा। आखिरकार ये लोग यहाँ किस मकसद से आए थे और क्या करने वाले थे? झलक तुरंत अनामिका के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। अब तो शालिनी भी झलक के इस बेखौफ और बेपरवाह अंदाज को देखकर हैरान रह गई थी। वो सोचने लगी थी कि कोई इंसान इतना ज्यादा बेवकूफ या फिर इतना ज्यादा निडर कैसे हो सकता है।